बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और दयालु नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने अंजीर के पेड़ को श्रापित करना, प्रश्नों को ढूंढना, दो पुत्रों का दृष्टांत, किसान और बारी के स्वामी का दृष्टांत और विवाह के भोज के दृष्टांत को देखा था। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि यीशु हेरोदिया, सदुकियों और फरीसियों को उत्तर देते हैं और यीशु फरीसियों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखें कि यीशु हेरोदियों को क्या उत्तर देते हैं। हेरोदी लोग यीशु के पास अपने प्रश्न लेकर आए और वास्तव में वह प्रश्न उनके विशेष पद से संबंधित था। वे राजनीतिक लोग थे जो हेरोद के घराने का पक्ष लेते थे और उसी घराने के लोगों की ओर आशा लगाए थे जो उन्हें रोमन साम्राज्य से छुटकारा दिला सके। मैंने समझता कि हेरोदी लोग भी धार्मिक दल के रूप में देखे जाए, क्योंकि वे कट्टर राजनीतिज्ञ थे। जो भी हो कि फरीसी लोग प्रत्यक्ष रूप से उन्हें उपयोग में लेते थे और यह संभव है कि कई फरीसी हेरोदियन भी थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फरीसी इस पहले आक्रमण में प्रभु यीशु को भड़काते या उकसाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 15 से 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार विमर्श किया कि किस प्रकार उसको उसी की बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी के प्रभाव में नहीं आता, क्योंकि तू किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर चुकाना उचित है या नहीं। मित्रों, स्पष्ट रूप से वे उसके विचार को ग्रहण करना नहीं चाहते थे। उनके पास उनके अपने उत्तर थे या फंसाने वाला प्रश्न था। यदि वह कहता कि तुम्हें कैसर को कर नहीं चुकाना है, तो उस पर रोमन साम्राज्य के विरोधी होने का दोष लगाया जा सकता था और उस समय इसराइल पर रोमन साम्राज्य था। यदि उसने कहा होता कि हाँ, तुम्हें कैसर को कर देना चाहिए, तो वह सच्चा मसीही नहीं हो सकता था। उन्होंने सोचा कि हमारे प्रभु एक दुविधा की नोक में फंस जाएंगे या पड़ जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 18 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उनकी कुटिलता जानकर कहा, हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परख रहे हो। यह ध्यान दीजिए कि उसने उन्हें क्या कहा, अर्थात पखंडी कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं, मुझे वह सिक्का दिखाओ जिससे कर चुकाया जाता है। और वे उसके पास एक दिनार ले आए। मित्रों, यहां ध्यान देने की बात है कि उसने उनके सिक्के का उपयोग किया। मैं अक्सर चकित होता हूं कि उसने अपने ही सिक्के का प्रयोग क्यों नहीं किया, और मैं सोचता हूं कि यह इसलिए किया क्योंकि उसके पास एक भी सिक्का नहीं था। हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 20 पद में आगे पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, यह आकृति और लेख किसके हैं। वे रोमन साम्राज्य के विधि मान्य चलार्थ का उपयोग कर रहे थे और यहां पर एक रोमन सिक्का था। मत्ती 22 उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, कैसर के। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह एक आश्चर्यजनक उत्तर था, क्योंकि इसमें सिर्फ उनके प्रश्नों के उत्तर देने मात्र से कुछ बढ़कर था। और उसने निश्चित रूप से ऐसा ही किया, इसमें कुछ बढ़ाकर वह कह रहा है कि वे कैसर के ऋणी हैं। वे उसके सिक्के का उपयोग कर रहे थे और रोमियो के सड़कों पर चल रहे थे और रोमियो ने उन्हें कुछ हद तक शांति भी दी थी, इसलिए वे रोमियो के ऋणी थे। जो कैसर का है उसे कैसर को दो, परंतु एक दूसरा विभाग भी है, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। हम मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, यह सुनकर वे आश्चर्यचकित हुए और उसे छोड़कर चले गए। मित्रों, यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि हमारे प्रभु उनकी चाल में नहीं फंसे। यद्यपि वे कैसर के कुछ ऋणी थे, परंतु इससे परमेश्वर के प्रति उनकी जिम्मेदारी कुछ कम नहीं हुई थी। अब हेरोदियों ने उसे छोड़ दिया है और अब सदुकियों की बारी है कि वे उससे प्रश्न पूछे और वे भी उसे फंसाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि यीशु सदुकियों को उत्तर देते हैं, मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय और उसके 23 पद से 28 पद तक, जिसमें हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसी दिन कुछ सदुकी जो कहते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछने लगे, गुरु, मूसा ने कहा था, यदि कोई पुरुष संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी, और 7वें तक यही हुआ, और अंत में वह स्त्री भी मर गई। अतः पुनरुत्थान होने पर वह 7ों में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। मित्रों, सदुकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने प्रभु को फंसाने के लिए एक बेतुका उदाहरण का उपयोग किया। एक स्त्री की कल्पना कीजिए जो 7 भाइयों को अपना पति बना चुकी है। ऐसा लगता है कि ऐसा करने के लिए मानो किसी बड़े शहर में रहने वाली हो। उनका प्रश्न था कि वह किसकी पत्नी होगी। सदुकियों ने 2 पहलुओं में गलती की और प्रभु उसे उनके ध्यान में लाते हैं। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय और उसके 29 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र या परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते। सदुकी लोग 2 क्षेत्रों में अनभिज्ञ थे। वे शास्त्र से अनजान थे और परमेश्वर की सामर्थ से अनभिज्ञ थे। शास्त्र की अनभिज्ञता और परमेश्वर के सामर्थ की अनभिज्ञता ने उन्हें इस बेतुके उदाहरण को लाने का कारण बनाया। इसका विवरण साधारण है। हम मत्ती उसके 22 अध्याय और उसके 30 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान होने पर लोग न तो विवाह करते और न ही विवाह में दिए जाते हैं, परंतु स्वर्ग में वे दूतों के समान होते हैं। मित्रों, वह यह नहीं कह रहे हैं कि वे स्वर्गदूत हैं और न ही हम कभी स्वर्ग में स्वर्गदूत बनेंगे, परंतु हम लोग स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे, जिसमें हम स्वर्ग में शादी विवाह नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि स्वर्ग में कोई जरूरी नहीं होगा कि हम उसी प्रजाति को जन्म के द्वारा बनाए रखेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि पति पत्नी जो पृथ्वी पर एक दूसरे के बहुत करीब थे, वे स्वर्ग में एक साथ नहीं होंगे। यदि वे दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो यह सच है कि वे रह सकते हैं, परंतु मेरे प्रिय मित्र, उन लोगों के बारे में जरा सोचिए जो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें एक साथ रहने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, उन दोनों के पास एक नई मनोवृत्ति या स्वभाव होगी और संभवतः वे आपस में पृथ्वी पर से भी बहुत अच्छे से वहां पर रहेंगे, जो शायद पहले नहीं थे। हम मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय और उसके 31 और 32 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, क्या मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मित्रों, यह विनाश करने वाला कथन है। उनका क्या होगा जो पहले जा चुके हैं? अब्राहम के बारे में आज क्या है? ठीक है, वह आज भी उतना ही अब्राहम है जितना वह पहले था। इब्राहिम, इसहाक और याकूब बस पृथ्वी से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किए गए हैं। वे मरे नहीं हैं, वे जीवित हैं। और यह आपके प्रियों के साथ भी सच है जो मसीह में हैं और आपका इंतजार स्वर्ग में कर रहे हैं। यह एक महिमापूर्ण सत्य है। हम मत्ती उसके 22 अध्याय के 33 पद में पढ़ते हैं, जब लोगों ने यह सुना तो वे उसके उपदेश से चकित रह गए। अब हम आगे देखते हैं कि यीशु फरीसियों को उत्तर देते हैं। अब हेरोदी लोग और सदूकी चुप हो गए हैं। फरीसी लोग यीशु को और इन दो दलों को देख रहे थे। फरीसी लोग एक धार्मिक राजनीति दल के लोग थे। वे चाहते थे कि दाऊद का राज्य फिर से स्थापित हो, ताकि वो रोमी साम्राज्य से छूटकर अपने अलग साम्राज्य को स्थापित करें। इस राज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए वे हेरोदियों से मिल गए थे, परंतु धार्मिक दल होने के कारण वे सदूकियों का विरोध करते थे। फरीसी लोग आज के रूढ़िवादी कलीसिया के पक्ष के साथ मेल खा सकते हैं और सदूकी लोग उदारवादी कलीसिया के पक्ष के साथ मेल खाते हैं। और फरीसी भी अन्य दो दलों की तरह प्रभु यीशु को फंसाने की तैयारी में थे, और इसलिए उनके प्रतिनिधि एक वकील ने उसके सामने एक बहुत ही मजेदार प्रश्न को रखा, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 34 और 35 पद में पाते हैं। लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे एकत्रित हुए, और उनमें से एक ने, जो व्यवस्थापक था, परखने के लिए उससे प्रश्न किया। हम देखते हैं कि फरीसियों की एक बैठक हुई, तब उन्होंने एक रणनीति बनाई और इसे बड़ी चतुराई के साथ इस वकील के सामने रखा। वह एक शास्त्री था जो मूसा की व्यवस्था का विद्वान या जानकार था, जो इस प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला था। हम मत्ती रचित सुसमाचार के 22 अध्याय और उसके 36 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा प्रमुख है? प्रभु यीशु के उत्तर को अब ध्यान से सुनिए, जिसे हम मत्ती 22 उसके 37 और 38 पद में पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। आप ध्यान दीजिए कि उसने 10 आज्ञाओं में से किसी एक आज्ञा को भी नहीं लिया, वह उन्हें दूसरी आज्ञा देते हैं। हम मत्ती 22 के 39 पद में पढ़ते हैं, और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जब आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारे प्रभु इस व्यक्ति के साथ बहुत स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, तुम जानना चाहते हो कि कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है। परमेश्वर से प्रेम कर, यही सबसे बड़ी आज्ञा है, और अपने पड़ोसी से प्रेम करना दूसरी बड़ी आज्ञा है। हम मत्ती 22 अध्याय उसके 40 पद में पढ़ते हैं, यही दो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। वास्तव में ये दो आज्ञाएं मूसा की पूरी व्यवस्था के सार को प्रस्तुत करते हैं। यदि फरीसी लोग ईमानदार हैं, तो प्रभु यीशु का उत्तर बहुत स्पष्ट और सटीक है। उन्होंने कहा होगा, हम असफल हो गए, हम व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते हैं, हमें भी एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और उस समय प्रभु यीशु एक उद्धारकर्ता लगभग क्रूस की छाया के नीचे था। हम आगे देखते हैं कि यीशु फरीसियों के सामने प्रश्न रखते हैं। फरीसी फिर से इकट्ठे होते हैं कि उसे दूसरे प्रश्न के द्वारा फंसाने की कोशिश करें, परंतु वह उन पर जोरदार प्रहार करते हैं और उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, जिसे हम मत्ती 22 उसके 41 पद से लेकर 44 पद में पाते हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे, तब यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा में उसे प्रभु क्यों कहता है? अर्थात, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं। प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता 110 उसके एक पद का उदाहरण दे रहे हैं। कैसे दाऊद अपने पुत्र को अपना पुत्र कहकर पुकार सकता है? फरीसियों को कहना पड़ा होगा कि हो सकता है कि पुत्र को अलौकिक रीति से दाऊद के लिए जन्म लेना पड़ा कि उसे मेरा प्रभु कहे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 45 पद में आगे पढ़ते हैं, यदि दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र कैसे हुआ? यह एक ढूंढने वाला प्रश्न है, हमारे प्रभु ने फरीसियों के सामने रखा। मित्रों, इस प्रश्न के अनेक तात्पर्य हैं जो आश्चर्यजनक हैं। हमारे प्रभु ने कहा कि दाऊद ने भजन संहिता 110 में लिखा, वह इसे पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा, और वह मसीह के बारे में लिखा। यदि दाऊद उसे प्रभु कहता है, तब वह उसका पुत्र कैसे हुआ? दाऊद कैसे अपने पुत्र को श्रेष्ठ कह सकता था जब तक कि वह ना हो? इस प्रश्न का एक ही तर्कपूर्ण उत्तर है, कुंवारी से जन्म लेना। यीशु दाऊद का पुत्र है, परंतु वह दाऊद से भी श्रेष्ठ है। दाऊद का पुत्र दाऊद से महान नहीं हो सकता जब तक कि उसके बारे में कोई महान परिचय ना हो, जो उसके वंश को एक महान पुत्र होने के लिए नहीं देता है। यीशु के अलौकिक जन्म का लेख ही एक संतुष्टजनक उत्तर उपलब्ध कराता है। दाऊद का प्रभु दाऊद की वंशावली में आ गया, जैसे कि लूकरचित सुसमाचार में लिखा गया है। लूकरचित सुसमाचार 1:35 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मित्रों, वह दाऊद से बड़ा है क्योंकि वह प्रभु है जो स्वर्ग से है। प्रभु यीशु फरीसियों पर दबाव डाल रहे थे कि वे सच्चे विषय का सामना करें और उसे दाऊद के पुत्र के रूप में स्वीकार करें और दाऊद के प्रभु के रूप में भी। इस तरह धार्मिक आगुओं के साथ मौखिक लड़ाई का अंत होता है। और तब हम मत्ती उसके 22:46 में आगे पढ़ते हैं, कोई भी उसे कुछ उत्तर ना दे सका और उस दिन से किसी को उससे और प्रश्न करने का साहस ना हुआ। मित्रों, इसके बाद उन्होंने उस पर कोई भी मौखिक आक्रमण नहीं किया। उन्होंने उसकी मृत्यु का निश्चय कर लिया था और वही बात थी जिसे वे आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने देखा कि वे उसको उत्तर नहीं दे सकते हैं, यह उसके दैविक होने का एक महान प्रमाण है। मित्रों, यहाँ पर 22 समाप्त होता है और हम 23 से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे, जिसमें हम निम्न विषयों पर ध्यान करेंगे। यीशु भीड़ को शास्त्री और फरीसियों के विरोध चेतावनी देते हैं, फरीसी और शास्त्रियों पर धिक्कार सुनाते हैं और यरूशलेम की स्थिति पर रोते हैं। हम इन विषयों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। मित्रों, यह अध्याय प्रभु यीशु और धार्मिक अगुओं के बीच के विरोध का समापन करता है। वह भीड़ को उनके बारे में चेतावनी देते हैं और तब बिना किसी चूक के वह धार्मिक अगुओं की निंदा करते हैं। कुछ जो शब्द हमारे प्रभु के होठों से निकले थे उनमें इतने कठोर शब्द और कोई नहीं थे। यहाँ पर हम इस तरीके से पाते हैं, यह एक दया रहित निंदा है। यदि आप भी इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो यह आपके अपने आत्मा को भी विवरण कर देगा। यीशु शास्त्री और फरीसी के विरोध में चेतावनी देते हैं। यीशु का सबके सामने फरीसियों की निंदा करने की घटना मंदिर की है, जो उसके शत्रुओं का गढ़ है। मत्ती रचित सुसमाचार 23:1-2 में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी स्वयं मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं। ये धार्मिक अगुए अधिकारी के पद पर थे और वे पुराने नियम के शास्त्रों को नियंत्रण में रखते थे। उन्होंने उसे हड़प लिया था, जिसे हड़पने का या लेने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था। उन्होंने उसी तरह से उस पद को हथिया लिया था, जैसे कि आज कलीसिया के अगुए करते हैं। लोग उनकी ओर सत्य का अर्थ या व्याख्या के लिए आते थे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 23:3 में आगे पढ़ते हैं, इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहें उसे करना और मानना, परंतु उनके जैसे कार्य मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जो शिक्षा शास्त्र देती है उसी को करना है, परंतु शास्त्री और फरीसियों के कामों के अनुसार नहीं करना है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। उसकी दुखपूर्ण व्याख्या को सुनिए जो धार्मिक अगुओं के ऊपर है। मत्ती उसके 23:4-7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, वे भारी बोझों को बांधकर मनुष्यों के कांधों पर तो लाद देते हैं, परंतु स्वयं उन्हें उंगली से भी छूना नहीं चाहते। वे अपने सब काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की झालरें लंबी करते हैं और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख आसन और बाजारों में आदर सत्कार पाना, लोगों से रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय लगता है। मित्रों, ये लोग उपाधि पाना पसंद करते थे। ये चाहते थे कि लोग इन्हें जाने। वे एक निश्चित धार्मिक वस्त्र पहनना पसंद करते थे और आदतें रखते थे जो उन्हें अन्य लोगों से अलग कर देती थी, और वे अपने ऊंचे पद पर ध्यान आकर्षित करते थे। हमारे प्रभु इन सब बातों की निंदा करते हैं। हम मत्ती 23:8 में पढ़ते हैं, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम रब्बी न कहलाना, जिसका अर्थ है शिक्षक, और कलीसिया में एक निश्चित आदर और सम्मान एक पादरी का है, परंतु वह दूसरे किसी से भिन्न नहीं है, वह सिर्फ आपके एक भाई है। मित्रों, हम मत्ती उसके 23:9-10 को पढ़ते हैं, लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम अगुए न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही अगुआ है, अर्थात मसीह। पिता एक जीवन दाता है। किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य को आत्मिक बातों में पिता कहना उसे परमेश्वर के स्थान पर रखना है, जैसे कि वह आत्मिक जीवन देता है। यह इष्ट निंदात्मक है। केवल पिता परमेश्वर ही जीवन देता है। एक शिक्षक वह है जो एक अधिकार के पद पर है। आज मसीह कलीसिया के मुखिया या अगुए के रूप में है जो अधिकार के पद पर है। हम मत्तयी सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जो तुम में से बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मित्रों, यदि आप सबसे बड़ा बनना चाहते हैं तो सबका सेवक बने। और आगे हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसियों के विरोध धिक्कार की घोषणा। यहां पर हम देखते हैं कि ममता से भरे यीशु कठोर भाषा का उपयोग करते हैं। संपूर्ण परमेश्वर के वचन में किसी भी पुराने नियम के भविष्यवक्ता ने पाप की इतनी भर्त्सना नहीं की जितनी की प्रभु यीशु मसीह ने की। एक उदारवाद वक्ता यह भी नहीं जानता था कि यह बाइबल में है। उसने कभी भी बाइबल नहीं पढ़ी थी। आज हमारे दिनों में कुछ गलत फहमियां हैं कि वास्तव में यीशु मसीह कौन है। उदारवाद बताता है कि उसने जो भी बातें कही वो प्रेम के विषय में थी। एक बार एक जुलूस में कुछ लोग बैनर लेकर चल रहे थे और विरोध कर रहे थे। उस बैनर पर लिखा था, यीशु हाँ कलीसिया नहीं। यह कई वर्ष पूर्व एक दूसरे देश की बात है। ओरेगोन के एक सीनेट सदस्य ने एक बड़ा विचार सामने रखा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलीसिया गलत प्रभाव दे रही है, कि यह पीढ़ी यीशु को चाहती है परंतु कलीसिया को नहीं। ठीक है, मैं इससे सहमत होता हूँ कि कलीसिया गलत प्रभाव दे रही है, परंतु मुख्य समस्या है कि वे नहीं समझ पाए हैं कि यीशु वास्तव में कौन है। वह प्रेम करने वाला कोई बच्चा नहीं है, जैसे कि उदारवादी सोचते हैं कि वह है। यह निश्चित रूप से सच है कि वह पापियों से प्रेम करते हैं और पापियों के लिए मर गए, परंतु वह पापियों का न्याय भी करने जा रहे हैं। हमें उसके बारे में सही परिदृश्य जानने की आवश्यकता है, इसलिए वही एक है जो हमारे दिनों में गलत समझा गया है। मित्रों, प्रभु यीशु का औसतन परिकल्पना भी बाइबल आधारित नहीं है। उदाहरण स्वरूप देखें, एक बार एक प्रचारक ने उदारवाद प्रचारक से यह पूछा, जिस यीशु पर आप विश्वास करते हैं क्या वह कुंवारी से जन्मा है? उसने कहा, नहीं। क्या वह संसार के पापों के लिए क्रूस पर मरा? नहीं। क्या वह शारीरिक रीति से कब्र में से जी उठा? नहीं। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि वह यीशु कहां उत्पन्न हुआ। कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है जो पहली शताब्दी में रहे यीशु के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे पास एक लिखित प्रमाण है जो कुंवारी से जन्मे व्यक्ति के बारे में कहता है, जिसने चमत्कार किए, जो संसार के पापों के लिए मरा, जो मुर्दों में से जी उठा, जो स्वर्ग पर चढ़ गया और जो पृथ्वी पर फिर से एक न्यायी के रूप में आने वाला है। मेरे प्रिय मित्र, यह यीशु साधारणता आज नहीं जाना जाता है, और फिर भी वही एक यीशु है जो कभी इस दुनिया में रहा। वह दूसरा कल्पना शक्ति की एक कल्पना है। अब उसकी सुनिए, वह जो शास्त्री और फरीसियों को धिक्कारते हैं। यह एक कठोर भाषा है जिसे हम मत्तयी सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 13 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। तुम न तो स्वयं प्रवेश करते हो और न ही प्रवेश करने वालों को भीतर जाने देते हो। प्रभु यह भर्त्सना या धिक्कार शब्द इस भाग में 8 बार प्रयोग करते हैं, और शास्त्री और फरीसी को 7 बार पाखंडी कहते हैं। वह उन्हें उनकी झूठी शिक्षा और अगुवाई के द्वारा स्वर्ग के मार्ग में रुकावट बनने के लिए दोषी ठहराते हैं। हम मत्ती 23 अध्याय उसके 14 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हुए भी तुम विधवाओं के घरों को निगल जाते हो, इसलिए तुम्हें भारी दंड मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि ये लोग एक लंबी प्रार्थना करते हैं, परंतु वे हृदय रहित और अपने काम के करने में धृत हैं। हम मत्ती 23 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए जल थल में फिरते हो, और जब वह आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हो। ओह, वे बाहर जाकर गवाही देने में महान थे, परंतु वे किसी को भी प्रभु के पास नहीं ला रहे थे। वास्तव में उनके द्वारा परिवर्तित लोगों में से कोई भी नया जन्म नहीं पाया था। हम मत्ती उसके 23 अध्याय और उसके 16 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, जो कहते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाए तो वह बंध जाएगा। मित्रों, वह एक कर्जदार है, उसकी शपथ होने से वह बंध जाता है, जिसे हम आगे मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, हे मूर्खों और अंधों, क्या महत्वपूर्ण है सोना या वह मंदिर जो सोने को पवित्र करता है? फिर कहते हो, यदि कोई वेदी की भेंट की शपथ खाएगा तो वह बंध जाएगा। यदि वह अपने शपथ को पूरा नहीं कर पाया तो वह अपराधी है, अर्थात उसे पूरा करने में असफल हुआ। तब हम मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 19 पद से लेकर के 22 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, हे अंधों, क्या महत्वपूर्ण है भेंट या वह वेदी जो भेंट को पवित्र करती है? इसलिए जो शपथ खाता है वह वेदी और उस पर रखी भेंट दोनों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह मंदिर व उसमें रहने वाले परमेश्वर की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले दोनों की शपथ खाता है। मित्रों, फरीसी लोग यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आप मंदिर या वेदी की शपथ खाते हैं तो आप शपथ को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु यदि आप मंदिर के सोने की या वेदी के दान की शपथ खाते हैं तो आप शपथ से बंधे हैं। यह सच है कि वे बाल की खाल निकाल रहे थे, और जो महत्व उन्होंने आत्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए था उसके बदले में या उससे बढ़कर वे भौतिक वस्तुओं के लिए कर रहे थे। मित्रों, यहाँ पर हमारा यह अध्ययन समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस अध्ययन से अवश्य ही आत्मिक लाभ मिल रहा है। आज हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि हम इस संसार में आज कहाँ पर हैं, हमारा विश्वास किस ओर बढ़ रहा है। प्रभु आप सबको सही निर्णय लेने में मदद करें। कृपया पत्रों के द्वारा अपनी आशीषों को हम तक अवश्य पहुंचाएं, यूं अपनी सलाह भी हमें दे, ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। प्रभु आप सबको अपनी आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हम जाएंगे वहीं जहां यीशु रहता है, हमको है यकीन, हम जाएंगे वहीं जहां यीशु रहता है, जहां यीशु रहता है। Oh, oh, oh.
नहीं, न कोई दुख होगा न कोई दुश्मनी, पर तू शांति रहेगी। न कोई भूख होगी न कोई प्यास होगी, न कोई उलझन होगी, न कोई दुख होगा न कोई दुश्मनी, पर तू शांति रहेगी। हमको है यकीन